हम लोग कर्मयोग की चर्चा कर रहे थे तो भगवान कहते हैं कि कर्मयोग के बहुत लाभ हैं, ये हम लोगों ने देख लिया है। क्या क्या लाभ है कि उसको शुरू करने से और काम खत्म नहीं हुआ तो उसके अंदर आपका प्रयत्न का जो है एफर्ट लॉस नहीं होता है। अच्छा, काम गलत भी हुआ तब भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान को आपके काम के फल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक हुआ कि गलत हुआ उनको कुछ नहीं है, उनसे उनको केवल ये देखना है कि आपके काम करने के समय भाव क्या था। आपने कर्मयोग भगवान को याद करके किया, अगर याद करके किया आपको फल मिलेगा, एक नंबर। दूसरा बोले प्रत्यवायो न विद्यते, कोई उसका जो है एंटी फल नहीं होता, एंटीबायोटिक खाया रिएक्शन हो गया, ऐसा नहीं है, कोई उसका रिएक्शन नहीं है। और तीसरा फल वो कहते हैं कि स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महत्व, थोड़ा सा भी अगर करोगे तो आपको जो है वो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देता है, इतना लाभ है उसका। फिर वो कहते हैं कि आपका देखो अधिकार किसमें है, बोले कर्म में केवल अधिकार है। ये कर्म कौन सा है, हमारे कर्तव्य कर्म। बोले कर्तव्य कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल कर्तव्य कर्म में आपका अधिकार है और कर्म के फल में आपका अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं मतलब आपके हाथ में नहीं है, आप जो चाहोगे मिल जाएगा ऐसा नहीं होगा, फल दूसरे किसी के हाथ में है। इसलिए वो कहते हैं मा कर्म फल हेतु भूम, आप जो है कोई भी कर्म कर्म फल के लिए नहीं करो, भगवान के लिए करो। अब बाद में जाकर उन्होंने कहा जो कर्म फल के लिए जो कर्म करते हैं वो कृपणा, वो जो है कृपण है, माइजर है, वो कर्म करके भगवान मिल सकते थे, आप कर्म फल के अंदर फंसे हुए हो। कहीं इसका ये गलत मतलब नहीं निकाल लेना कि कर्म फल की चिंता नहीं करो इसलिए काम करना ही बंद कर दो, ऐसा नहीं। फिर कहते हैं कि एक कर्म योग की परिभाषा दी समत्वम योग उच्चते, समत्वम। समत्वम क्या, कि फल तो आएगा, कर्म जो हम करेंगे उसका फल तो आना ही है, चाहे ईश्वर को समर्पित कर्म करें चाहे अपने लिए करें, हर कर्म का कर्म फल तो आएगा ही। तो जब कर्म का फल आता है तो उस टाइम में अगर हमारे मन की पसंद का हुआ तो हम बहुत खुशी हो जाते हैं, नहीं पसंद हुआ तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो ये सुख दुख हमारा चलता रहता है। तो कहते हैं समत्व योग जीते, कि कर्म का फल आया मगर आपके अंदर कोई उसके अंदर विकार नहीं हुआ। वो बोलते हैं कि ये कर्म योग है, समत्व योग उच्चते। सिद्ध असिद्ध यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों में आप समय। हमने आपको पहले ही बताया ना कि भगवान फल के अंदर नहीं इंटरेस्ट है उनका, आप जीतोगे कि हारोगे कोई फर्क नहीं है, लाभ होगा कि नुकसान होगा भगवान कुछ नहीं है, भगवान क्या लेना है केवल आपका भाव लेना है। तो हमें क्या करना है, प्रसाद बुद्धि। प्रसाद बुद्धि क्या है, प्रसाद बुद्धि ये कि जब हम मंदिर में जाते हैं पंडित जो प्रसाद देता है हम ये नहीं कहते हैं ये हमको पसंद नहीं है या ये कमती है ये ज्यादा है, ऐसा नहीं कहते हम। ठीक उसी तरह से भगवान के लिए जो कर्म करते हैं, भगवान ने जो हमको प्रसाद दिया है, जो कर्मफल दिया, कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है, कर्मफल किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में। क्यों भगवान के हाथ में है, क्योंकि भगवान हमारा पिछला रिकॉर्ड सारा जानते हैं, हमको नहीं याद है हमने क्या क्या कर्म किए, हमको ये भी नहीं मालूम है कि आगे हमको क्या चाहिए। हम भगवान से मांगते कुछ बहुत कुछ मांगते हैं कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, भगवान को मालूम है क्या चाहिए। तो भगवान सोच समझ के जो है हमें फल देते हैं और हमको उसके अंदर प्रसाद बुद्धि से ले लेना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि एक और कर्म बताया, एक परिभाषा बताई, योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, ये एक और परिभाषा है। समत्वम योग उच्चते, समता है आपकी। दूसरा योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता क्या है। तो बोलते हैं बुद्धि युक्त तो जहाती है, बुद्धि युक्त तो क्या है, समत्व विषया बुद्धि, जिसने समत्व बुद्धि को अपना लिया, समत्व बुद्धि को अपना मीन्स कर्मयोग को अपना लिया, जहां ती है वे सुकृत दुष्कृत, और उसने यहीं पर सुकृत दुष्कृत मतलब पाप और पुण्य दोनों ही छोड़ दिए, उसको पाप पुण्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तस्मात योगा युजस योग कर्म सुकौशलम, बोले यही योग की कुशलता है। यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं क्योंकि योग ही तो कर्मों में कुशलता है, अर्थात स्वधर्म रूप में कर्म में लगे हुए पुरुष। पहला चीज करना क्या है, आपका जो स्वधर्म है, मेरा क्या स्वधर्म है, जो बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं उनका धर्म क्या है, पढ़ना है। हम गृहस्थियों का क्या धर्म है, अपनी गृहस्थी देखना हमारा धर्म है। उसके अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से शूद्र हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से शूद्र सत्व रजस तमस गुण के हिसाब से भगवान ने बांटा है, भगवान ने कहा मैंने बनाए ये सब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमने बनाए हैं। और हमने ये भी देखा है कि हमारे शरीर में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, याद है कौन है ब्राह्मण, थिंक टैंक, ये ब्राह्मण है, और ये पांव, इसी तरह हर कंपनी में थिंक टैंक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सारे पैसे उसके पास आते हैं, एंड द एम्प्लॉयज वर्कर्स आर शूद्र, वो सब काम करते हैं। कंट्री में भी ऐसा है, हर देश में ऐसा व्यवस्था है। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्त तो जहाती है उभय सुतकृति से, तस्मात योगा युच योग कर्म सुकौशलम, तो आप अपना कर्तव्य कर्म करें। और कैसे करें, हर पुरुष जो ईश्वर समर्पित बुद्धि से उत्पन्न हुआ, पहला काम कर्तव्य कर्म, आपका जो कर्तव्य कर्म है। देखो गृहस्थ का कर्तव्य कर्म एक होता है, वानप्रस्थ का अलग हो जाएगा, संन्यास का अलग हो जाएगा। आप वानप्रस्थ में जाके गृहस्थी का काम करोगे वो आपका कर्तव्य कर्म नहीं है, संन्यास आश्रम में पहुंच के फिर आप बोलोगे कि हम बच्चे खिलाएंगे, ये नहीं है। सब उन्होंने धर्म बता दिए कब आपको क्या करना है, ईश्वर समर्पित कीजिए। फिर उसके बाद में सिद्धि असिद्धि विषयक समत्व भाव ही कुशलता है। अगर ये तीन चीजें आपने की, पहला अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, दूसरा ईश्वर की प्रार्थना के लिए ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तीसरा प्रसाद समत्व बुद्धि, ये तीन चीजें आपको याद। देखो किसी किस्म का नया कर्म करने को नहीं कहा उन्हें, पूजा करो इतनी माला जप करो ये सब नहीं कहा हमको, भगवान कहते हैं कि इस तरीके से करो, करने से क्या होगा, यही इसमें कौशल है कि स्वभाव से ही बंधन करने वाले जो कर्म है। देखो कर्म का स्वभाव है बंधन में डालना, कौन सा कर्म, साकाम कर्म, जो हम अपने लिए करते हैं वो कर्म आपको बांधता है। कैसे बांधता है, कर्म कैसे बांधता है? जैसे ही हमने कर्म किया उसका कर्म फल आया, फल आने से मेरे को अच्छा लगा, मेरे को फिर चाहिए, वो वासना बढ़ गई, ये आपको बांधता है। और ये वासना ही हम अपने भगवान को ब्लूप्रिंट देते हैं, हमारी इतनी वासना है, इतनी लाइकिंग्स हैं, अभी इसके हिसाब से हमको एक शरीर दो। तो उनके पास में कितने शरीर हैं? 84 लाख शरीर हैं उनके पास में। बोले तुम्हारी वासना ये वस्त्र ले लो, फिर उसमें खत्म करके आए, अभी और वासना है, और कौन सी है, अच्छा आप तुम वो वाला वस्त्र ले लो, घूमते रहो 84 लाख योनि के अंदर वासना लेके। तो कहते हैं वे भी समत्व बुद्धि के प्रभाव से अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। समत्व बुद्धि, जो कर्म के अंदर जो दोष है, जो आपको बांधता है, अगर वो समत्व बुद्धि अगर आप अपना लो ना, तो वो जो है उसका विष निकल गया कर्म का। कर्म का एक विष है, उसका पॉइजन है, क्या है वो आपको बांधता है। क्यों बांधता है? कि उसके अंदर लाइक्स डिसलाइक्स आ गई। अगर समत्व बुद्धि हुई, लाइक्स डिसलाइक्स है, फिर देखो साइंस है कि नहीं ये पक्का, समत्व बुद्धि छूट गई, कर्म का जो विष है निकल गया। जब वो उसका विष निकल गया तो हमारी लाइक डिसलाइक्स खत्म हो गई, लाइक डिसलाइक्स खत्म हो गई, वासना खत्म हो गई, वासना खत्म हो गई, ब्लू प्रिंट का जो है हमने बना के जो दिया था भगवान को ब्लू प्रिंट का, वासना क्या चीज है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वही खत्म हो गई। अब भगवान को क्या ब्लू प्रिंट दें? कुछ नहीं है हमारे पास वासना। जब वासना ही नहीं है तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर नहीं बनेगा, खत्म, छुट्टी। कर्मयोग का ये फल है। आया आपको समझ में? कर्म सुकौशलम, देखो साइंस को पकड़ लो आप, अगर इसका विज्ञान आपको समझ में आएगा तब आप करोगे, अगर विज्ञान नहीं समझ में आएगा आप कभी नहीं करोगे। क्या विज्ञान है? स्वभाव से ही बंधन करने वाले जो कर्म हैं, कर्म का स्वभाव ही आपको बांधेंगे। क्यों बांधेंगे? हमारी लाइक डिसलाइक, कर्मफल आएगा, कर्मफल आने से हमको अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा फिर करेंगे, हमको बंगाल का रसगुल्ला मिला स्पॉन्ज वाला, एक बार खाया अच्छा लगा, फिर दूसरी बार फिर नजर आया, बांध दिया आपको उसने। और वे भी समत्व बुद्धि के प्रभाव से अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। अगर हमने समत्व बुद्धि रख दी, लाइक्स डिसलाइक्स नहीं है, प्रसाद बुद्धि, भगवान ने जो दिया वो ठीक है, तब लाइक डिसलाइक इम्प्रिंट नहीं हुई, खत्म हो गया। और इससे क्या होगा? कर्मजम फलम तक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। ऐसे ही अब आपने जब छोड़ दिया बुद्धि युक्ता में, मतलब जिसने कर्म योग को पकड़ लिया, आप बताइए कर्म योग माने आपको अपने कर्तव्य कर्म करने, नंबर वन। देखो हम बहुत जल्दी जल्दी भूलते हैं, कर्म योग क्या है? हमको अपने कर्तव्य कर्म करने हैं। क्या कर्तव्य कर्म है? आपकी जैसी पोजीशन है वैसा है। आप अगर कंपनी में मैनेजर हो, उसके जो कर्तव्य कर्म है वो आपको करने हैं। घर में आप पति हो पत्नी हो, जो आपके कर्तव्य कर्म है वो करने हैं। बच्चों को क्या करना है? अपने कर्तव्य कर्म करने हैं। कैसे करने हैं? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। हम ये कर्म करके भगवान हमारे खुश होंगे कि नहीं, ये याद रखना है। दो, जो कर्म करेंगे उसका फल जरूर आएगा, चाहे वो ईश्वर के लिए करो और चाहे अपने लिए करो, कर्म का फल आना ही आना है। जो कर्म का फल आएगा अगर उसको समत्व बुद्धि से लेंगे तो वासना में इम्प्रिंट नहीं पड़ेगा, लाइक डिसलाइक्स नहीं होगी। जब लाइक डिसलाइक्स नहीं होगी तो क्या होगा? जन्म बंध विनिर्मुक्ता। आपको साइंस हमने बताया जन्म बंध, जन्म मरण खत्म आपका। क्यों? वासना ही नहीं है तो कैसे होगा फिर? पदम गच्छन्ति अनामयम, वो परम पद को पा जाता है अनामयम, वहां पर कोई उपद्रव नहीं है, फिर सुखी सुख है। कौन सा पद है वो? सच्चिदानंद, वहां दुख नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि कि योगानुष्ठान जनित सत्य शुद्धि से उत्पन्न हुई बुद्धि कब प्राप्त होती है, मतलब जो है हमने कर्मयोग किया कितने दिन तक करें बताओ, पता होना चाहिए ना पहुंच गया कि नहीं, अब बंद करना है कर्मयोग। भगवान कहते हैं चलो बताते हैं आपको, देखो वर्स नंबर श्लोक नंबर 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितिरिष्यति तदागन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोह कलिलम् बुद्धिर्व्यतितरस्यति तदागन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोह कलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। यदा व्हेन जब ते मीन्स तुम्हारी बुद्धि, आपकी विचार, आपकी बुद्धि, आपका मन व्यतितरिष्यति, जब उसको आप पार कर जाते हैं किससे, मोह कलिलम, मोह कलिल, कलिल मीन्स कीचड़, मोह कलिल मतलब मोह का ढेर, हम सब के भीतर में मोह का ढेर लगा हुआ है, मोह का कीचड़ है। कीचड़ पता है किसको कहते हैं, मोह का कीचड़ है बोलते, जब इसके मोह के कीचड़ को पार कर जाओगे तब हो जाएगा। मोह का कीचड़ क्या है, क्या मोह है, मोह किसको कहते हैं, नॉट नोइंग ए थिंग एज इट इज, किसी वस्तु को जो चीज जैसी है उसको नहीं जानना मोह है। जैसे एग्जाम्पल शरीर जगत, हाँ नहीं पहले इसको आप देखो ना, शरीर हम चाहते हैं मेरा बचपन बना रहे, मेरी जवानी बनी रहे, हम बुढ़े नहीं हो क्यों, इसमें सत्य बुद्धि है, ऐसा बना रहे ये, मेरा मकान ठीक रहे, मेरी दुकान ठीक रहे, मेरे संबंधी सब ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, कोई मेरे से छूटे नहीं, मोह बुद्धि है सब, कभी नहीं होगा ये। शरीर के बचपन को अटका के रख सकते हो, जवानी को अटका के रख सकते हो, आज तक तो सके नहीं, कभी नहीं होगा। आपके संबंध, बच्चे आपके साथ थे, यहां तो बड़ी जल्दी छूट जाते हैं, कॉलेज में गए छूट गए, नहीं होता है, संबंध नहीं बने रहते हैं, कोई भी चीज नहीं बनी रहती है, मगर हम क्या करते हैं, नहीं बनी रहे, हमारे जीवन तक बनी रहे, 100 साल तक बनी रहे, हमारा मकान कम से कम मेरे रहते रहते तो ठीक रहना चाहिए, उसके बाद जो होगा देखा जाए, ऐसा भी नहीं होता है। ये मोह है, हमारे शास्त्र कहते हैं जगत मिथ्या, हम कहते हैं जगत सत्य, ये मोह है। तो कहते हैं कि ये जब तक मोह रहेगा तब तक जो है आप वैराग्य नहीं होगा आपका, जैसे ही मोह खत्म हुआ वैराग्य हो जाएगा। जब आपको ये पता लगेगा कि दुनिया की हर वस्तु जो है वो मरने वाली है, बदलती है, तब उससे राग होगा, अटैचमेंट होगा, नहीं होगा। तदागंतासि निर्वेदम, फिर निर्वेद, निर्वेद मतलब वैराग्य, फिर निर्वाद हो, वैराग्य होगा। आप अगर जगत के नेचर के, जगत के स्वभाव को अगर जान लो, क्या स्वभाव है जगत का स्वभाव, ये बराबर बराबर क्षण क्षण में बदली होता है और मरता है, सब मरेगा, और हम क्या चाहते हैं, नहीं ऐसा बना रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, हमारी नौकरी बनी रहनी चाहिए, हम 80 साल के हों फिर भी हम जो है चेयरमैन बने रहे, ऐसा नहीं होगा। निर्वेदम, देखो निर्वेद सब जो है मुंडक उपनिषद में भी आया है, परिच्छ लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृतेन, जो ब्राह्मण है जो जानता है वो कभी भी ये, उसको ये पता है कि कर्म के द्वारा हमको आत्मा कभी नहीं मिलेगी। देखो एक चीज आप संभल के अच्छी तरह से जानते रख लो कि कोई भी कर्म करके आत्मा कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, मगर आप इसको पकड़ के रख लो कि कर्म से नहीं मिलने वाली है। तो वो क्या करता है जब कर्म से नहीं मिलने वाली है? तो वैराग्य। जब हमको पता लग गया जगत में हमको सुख नहीं मिलने वाला है तो क्या करेंगे? वैराग्य, हट जाओ वहां से, निर्वेद। बोले वैराग्य हो जाएगा आपका। यदा ते मोह कैलम बुद्धि व्यतिदृश्यति, जब आपकी बुद्धि उस कलिल से, उस कीचड़ से, उस मोह से पार चली जाएगी, मोह को आपने हटा दिया, तब क्या होगा? निर्वेद, आपको वैराग्य आ गया। डर लगता है वैराग्य से? जिस दिन पता लग जाएगा कि जगत में सुखी नहीं है, अपने आप वैराग्य आ जाएगा। हम तो सोचते हैं कि इसमें सुख है ना, तभी नहीं वैराग्य आता है। हम सोचते हैं कि पति पत्नी के अंदर सुख है, बच्चों में सुख है, माता पिता में सुख है, नौकरी में सुख है, धन में सुख है, तो इस वास्ते हम लगे रहते हैं। मगर जिस दिन पता लग गया कि इनमें सुख नहीं है, वैराग्य हो जाएगा। तो कर्मयोग क्या करता है? बोले कर्मयोग वैराग्य तक ले जाता है। कर्मयोग करने से वासना खत्म हो गई। वासना अगर खत्म हो गई तो आपके अंदर कर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी, वैराग्य आएगा अपने आप। आस्ते आस्ते मन शुद्ध होगा और वैराग्य आ जाएगा। आपके मन के अंदर जिज्ञासा है कि क्या है ये जीवन, किस लिए है? क्या सारा जीवन इसी तरह खटते रहे? क्या सारा जीवन क्या रोटी बनाने का काम है क्या? और कुछ नहीं करना है? तब आपके मन में विचार आ गया, ऐसी जिंदगी है, 65 साल तक काम करके रिटायर करके क्या हुआ, इतना सा बैंक बैलेंस है, फिर भी चिंता लगी रहती है। सारा जीवन यही चिंता में मर गए कि इतना पैसा होगा तो फिर बुढ़ापा ठीक होगा। जब बुढ़ापा आया तो बोलते हैं कि नहीं, इतना ठीक नहीं है और इतना चाहिए, हो गया, लगे हुए हैं। हम लोगों ने रामायण में भी देखा था, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। धर्म ते विरति, कर्म योग करोगे तो विरक्ति आएगी, और कोई तरीका नहीं है। आपको वासना जब खत्म होगी तभी आपको वैराग्य आएगा। जब तक वासना रहेगी तब तक आप संसार में दौड़ते रहोगे, बार बार हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। धर्म से अगर वैराग्य हो गया, अब इसके बाद आपको साधना करनी है, बस वो वैराग्य हो गया वहीं पर खत्म करने से नहीं होगा। अब आगे और आपको बढ़ना है। अब आगे क्या करना है? आपको ज्ञान लेना है। तो याद रखना, कर्मयोग सारा जीवन नहीं करना है। कर्मयोग जब फल देते, कर्मयोग को छोड़ देना है। कर्मयोग का फल कब होगा? मोह कलिल, जब हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हम खत्म कर दें, तो वैराग्य आ गया। देखो नचिकेता को भी परम वैराग्य था, उसको जो है यमराज ने बहुत प्रलोभन दिए, उसको कहा कि तुमको अगर जितना जीना है उतने दिन तक तुम जियो। बोला ऐसा होता है? बोला हाँ। बोले जीव को लाना तो मेरा काम है ना, मैं जब तक यमराज की सीट पर बैठा हूं मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। तुम रहो इस पृथ्वी पर जितने दिन रहना, रहो, जितनी संपत्ति चाहिए उतना ले जाओ, ये अप्सराएं ले जाओ, स्वर्ग की अप्सराएं ले जाओ, हमारे जितने नाच गाने बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, रथ हैं, सब ले जाओ तुम, और जितनी तुमको संपत्ति चाहिए वो भी ले जाओ। इतना उसको प्रलोभन दिया। 8 साल का लड़का कहता है मुझे को कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे तेज को, मेरी क्षमता को खत्म कर देंगी, ये भोग करेंगे तो हमारी इंद्रियां छीन हो जाएंगी, हमको नहीं चाहिए ये सब, हमको आत्मज्ञान चाहिए। ये नचिकेता की परीक्षा थी किसको वैराग्य है कि नहीं। आपको अगर मिलता तो आप छोड़ देते? नचिकेता का उसने अपने वैराग्य की परीक्षा दे दी और उसको आत्मज्ञान मिल गया। अच्छा, ये मिलेगा कब? तो कहते हैं यदा, यदा मतलब यस्मिन काले। कोई ऐसा नहीं कहा 5 साल बाद मिल जाएगा, कर्मयोग 5 साल तक करो उसका मिल जाएगा, ऐसी गारंटी नहीं है। यदा, जब आपकी बुद्धि इस तरह से साफ हो जाएगी, कीचड़ के पार आप चले जाएंगे, तब ऐसा होगा। कोई एग्जाम्पल दीजिए ना, तो पता लगे क्या ठीक हुआ कि नहीं हुआ। बोलते देखो एग्जाम्पल ऐसा है कि आप जब उल्टी करते हो उसके बाद फिर आपको उसको छूने का मन करता है, फिर उसको पकड़ने पकड़ के फिर अंदर घुसाए, नहीं होता है ना। इतना वैराग्य चाहिए विषयों से। आपका संग होता है उस उल्टी से? नहीं, वॉमिट से कोई हमको संबंध नहीं है। तो विषयों से इतना वैराग्य चाहिए। अच्छा, हमारे शास्त्र में तो और भी कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा है, हम उन सब आपको नहीं बताएंगे। दूसरा बताया कि अगर आपको हम पा गए कि नहीं, बोले कि जब आपको फल मिलता है उस टाइम में अगर आपको सुख दुख अगर आता है ना, ऊपर नीचे अगर होते हो, तब तो आपका कर्मियों का काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि समय तो बुद्धि नहीं बनी अभी तक। ये देखो, ये सब लिटमस टेस्ट है। आपने कर्म किया, भगवान के लिए किया, उसका फल आया, अब फल के बाद में आप सुखी दुखी अगर हो गए तो इसका मतलब आपका काम नहीं हुआ। अभी करते रहो फिर और कर्मयोग। और जब मोह खत्म हो जाता है तो क्या होता है, बुद्धि साफ हो गई। बुद्धि जब साफ हो जाएगी तब उसके अंदर आपके अंदर आत्मज्ञान के लिए इच्छा होगी। अच्छा, यहां पर श्रोतव्य श्रुतव्य च, इसका मतलब क्या है कि जब आपको वैराग्य हो जाएगा, जो सुन लिया है और जो सुनना है और हमको कुछ नहीं चाहिए, जो देख लिया है और जो देखना बाकी है नहीं चाहिए, जो खा लिया है, जो टेस्ट कर लिया है, जो अभी टेस्ट करना बाकी है नहीं चाहिए, जो हमने सूंघना था हमने चंदन सूंघ लिया, अब हमको पॉइजन नहीं सूंघना, और पॉइजन नहीं सूंघा था आज तक, नहीं चाहिए, जो हमको छूना था और जो अभी छूना बाकी है, हमने पृथ्वी की बहुत चीजें छू ली, अभी चंद्रमा को छूना बाकी है, सब खत्म हो जाएगा। श्रोतव्य श्रुतस्य च, हमको जो पा लिया है और जो पाना है दोनों से छुटकारा। ये जैसे ही यहां पर जब श्रोतव्य श्रुतस्य कहते हैं तो हम लोग उपलक्षणा से पांच ज्ञान इंद्रियों की सबकी बात कर लेते हैं, यहां पर केवल एक कर्ण इंद्रियों की बात कही श्रोतव्य श्रुतस्य, तो हमने आपको पांचों ज्ञान इंद्रियां बता दी, जो देखा है और देखना बाकी है नहीं चाहिए, वैराग्य हो गया। क्या देखेंगे, आत्मा तो दिखाई पड़ेगा नहीं, क्या दिखाई पड़ेगा, संसार ही दिखाई पड़ेगा, संसार से हम विरक्त हो चुके हैं। इसी तरह हमको लगा देना है। अच्छा, इसके बाद शंकराचार्य जी कहते हैं, यदि तू पूछे कि मोह रूप मलिनता से पार होकर आत्म विवेक जन्यक बुद्धि को प्राप्त हुआ मैं कर्म योग के फल रूप परमार्थ योग को ज्ञान को कब पाऊंगा, तो सुन, पहला स्टेज है हमने अपने को मन को शुद्ध कर लिया, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेप क्या है, अब ज्ञान प्राप्त करना है। तो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा उसके बारे में अब बताते हैं। श्लोक नंबर 53, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदास्तास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगं वपाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगं वपाप्स्यसि। कब जो है कर्म योग खत्म हुआ और ज्ञान को पाऊंगा, तो कहते हैं कि जब बुद्धि में विक्षेप नहीं है, निश्चला। देखो तीन वर्ड यहां पर भगवान ने बताए लिखे हैं, निश्चला, स्थास्यति और अचला। मिला आपको निश्चला, स्थास्यति और अचला। तो निश्चला क्या है, विक्षेप नहीं है, आपके मन के अंदर कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, निश्चल हो गया, विकल्प नहीं है तो अचला है। अचला किसको कहते हैं? जब विकल्प नहीं है, संकल्प विकल्प मना, विकल्प मैंने अच्छा ऐसे भी हो सकता है, उसको विकल्प कहते हैं। और स्थास्यति, बुद्धि स्थिर हो गई, बुद्धि स्थिर हो गई मतलब जानो योग मिल गया। जैसे ही आपको ये मिल गया, बुद्धि तत्व के अंदर निश्चित हो गई, आपका सब काम खत्म, यात्रा आपकी खत्म। तो निश्चला का मतलब क्या हुआ? विक्षेप नहीं है, एक जगह आपकी बुद्धि लग गई। अचला, विकल्प नहीं है, संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प कैसे समझेंगे? यहां से अब आपको मान लीजिए यमुनोत्री जाना है, तो आप जो है जीपीएस में डालते हो तो एक बता दिया, आप जाते जाते फिर जो है थोड़ा सा इधर उधर उल्टा भटक गए जबरदस्ती, फिर आपको रिकैलकुलेट करके बताता है, अच्छा इसका विकल्प अभी हो गया, ये विकल्प आ गया आपका। तो विकल्प नहीं है, निश्चला स्थिर अगर हो गई तब आपकी यात्रा खत्म हो गई। अच्छा ये बुद्धि कहां पर स्थिर हो? स्थिर तो होना चाहिए, कहीं बताना होगा ना। कुत्र बुद्धि स्थास्यति निश्चला अचला? तो कहते हैं समाधौ। कहां समाधौ वर्ड है, नजर आया आपको समाधौ? हाँ, जो समाधाव अचला है ना, वो संधि के कारण हो गया है। समाधौ अचला, समाधौ प्लस अचला, आपका ये बन जाता है समाधाव अचला। तो समाधि के अंदर, समाधि क्या होता है? समाधि इसमें कहते हैं समाधियते चित्तम अस्मिन इति समाधि, आत्मा तस्मिन आत्मना इति एतत्। मतलब जो है आत्मा के अंदर जो समाधि, जो चित्त लग जाता है उसको समाधि कहते हैं। देखो समाधि का अर्थ उन्होंने निकाला आत्मा, शंकराचार्य जी का अर्थ निकाला है कि आत्मा ही समाधि है, उसके अंदर चित्त जाके बैठ जाता है। तदा योगम अवाप्यसी, दैट इज फाइनल स्टेट, दैट इज फाइनल स्टेट, वहां पहुंच गए आप। मगर यहां पर एक और वर्ड भगवान ने यूज किया है, श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति विप्रतिपन्ना। देखो हमारे यहां बहुत से दर्शन है, जब आपके मन में विचार आता है ना कि मैं कौन हूं, तब आप खोजने निकलते हो। तो बहुत से दर्शन है हमारे, तो आप दर्शन गए, इसके दर्शन में पहुंच गए, वहां कुछ दिन किया, फिर आपको जो है मजा नहीं आया, दूसरे दर्शन में जाते हो, दूसरी फिलॉसफी में जाते हो, तीसरी फिलॉसफी में जाते हो, समझ में नहीं आता, अभी तक पहुंच नहीं रहे, भटक रहे हैं। कभी कभी गुरु मिल जाता ही था, जहां गुरु मिल गया डायरेक्ट फ्लाइट पहुंच गए वहां पर, नहीं तो बोलते हैं बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं आपको बताता हूं, मोस्ट ऑफ द दुनिया इस पापड़ बेलने में लगी हुई है। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग भी बहुत किए हुए हो, कोई ये कहेगा कि आप योग करो, पतंजलि योग करो। क्या है पतंजलि योग? चित्त वृत्ति निरोध योग है, खत्म। चित्त वृत्ति, मन की वृत्ति को उसको बंद कर दो, निरोध, स्टॉप कर दो, दैट इज योग। दूसरा कोई बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं है, आप पहले आसन करो। तीसरा कहेगा प्राणायाम करो। चौथा कहेगा जप करो। पांचवा कहेगा दोनों का कॉम्बिनेशन करो ना, जप और प्राणायाम का। जब इनहेल करो हरि, जब एक्सहेल करो ओम, कॉम्बिनेशन करो। कोई कहेगा त्राटक करो। त्राटक क्या? मोमबत्ती लगाओ, मोमबत्ती की शिखा को देखते रहो, आंख नहीं बंद करना है, कितनी देर तक कर सकते हो देखो, त्राटक करो। सब ये तो भटकर है। देखो सबका एक फल है, मगर वो फल मुक्ति नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राणायाम खराब है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आसन खराब है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जप खराब है, सबके अपने अपने फल हैं, मगर वो फल मुक्ति नहीं है, ये समझ लो, सबके फल है। आपने बहुत दिन तक ये सब करते हैं फिर भी बोले अरे ये तो शांति नहीं मिली, ये तो अभी तो आया नहीं कुछ, इतने दिन से कर रहे हैं, पूजा पाठ करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, क्या करें। फिर आपको गुरु मिल गए, गुरु ने आपको निर्देश दिया, आप पहुंच गए। ये तो है डायरेक्ट फ्लाइट, नहीं तो बोले भटकन लगती रही लगी रहेगी। देखो बहुत कम लोगों को वेदांत का अद्वैत ज्ञान होता है, बहुत बहुत कम लोगों को, नहीं तो लोग कहां भटकते रहते हैं बोले, बहुत लोग कुंडालिनी को जगाने में लगे रहते हैं, चक्र नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या होगा, सिद्धि मिलेगी, फिर क्या होगा, भटक गए उसी में, सिद्धि में फंस गए, ऐसे लोग लगे रहते हैं। अगर विद्धि स्थिर हो गई जैसे भगवान ने कहा तो जानो भगवान की कृपा है आपके ऊपर में, नहीं तो आप भटकते रहोगे इधर उधर सारी जिंदगी। हमारे यहां तो बहुत से आश्रम है ना, बहुत दर्शन के बहुत आश्रम है, आप जाके घूमो एक बार देखो, हर आश्रम वाले बोलेंगे ऐसा करो आपको मिल जाएगा। मगर उपनिषद क्या कहता है, उपनिषद कहता है तत्त्वमसि, सीधा कहता है तत्त्वमसि, आप ही हो, आप ही ब्राह्मण हो, दूसरा कहीं ब्राह्मण नहीं है। तो ये कैसे प्राप्त होगा तत्त्वमसि, कौन बताएगा, श्रवण मनन निधि ध्यान 3 स्टेप हैं, पहले सुनना पड़ेगा, अपने पढ़ने से होगा नहीं होगा, श्रवण करना होगा, फिर उसके ऊपर मनन करना होगा, फिर निधि ध्यान करना होगा, ठीक है। कठोपनिषद में कहते हैं यथा पंचावन तिष्ठन्ते ज्ञानिना मनसा स बुद्धिश्चन विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम, जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां मन और बुद्धि ये सब के सब जब स्थिर हो जाए तब आपका वो कंप्लीट हुआ, तब आपको जो है आप उसके अंदर अबाइड करते हो। तो वो किस जगह पहुंचे, बोले इसी को योग कहते हैं। हमारा वेदांत का योग क्या है कि जब आपकी पांचों ज्ञानेन्द्रियां और मन और बुद्धि स्थिर हो गई और उस आत्मा के अंदर अबाइड हो गई, स्थिर हो गई, तब आपका योग हुआ, इसको हम योग कहते हैं। बहुत अच्छा, तो वो योग वहां जहां पर हम पहुंचे वो कौन सी जगह है, जो भगवान ने बताया सांख्य योग में बताया ना, दूसरे अध्याय में 11 से लेकर 30 तक जो पढ़े, जो अर्जुन के सिर के ऊपर से भी चला गया हमारे ऊपर से भी चला गया, बोले वहां जाके स्थिर कर जाएगा, वो स्थिर है। तो समाधि का मतलब क्या है, तो यहां पर हमारे यहां पर समाधि के मतलब 2 किस्म के बताए जाते हैं, एक समाधि का मतलब है प्रोसेस और एक है एक्चुअल एबाइडेंस। तो यहां कौन सी समाधि की बात कर रहे हैं, बोले यहां प्रोसेस की बात की जा रही है, आप उस प्रोसेस के अंदर चल रहे हो तब भी वो समाधि है, और उसके अंदर वहां जब पहुंच गए वो भी समाधि है, तो यहां प्रोसेस की बात की जा रही है। तो कर्मयोग करो तो यात्रा का राउट क्या है, पहला काम क्या करना है, कर्मयोग, कर्मयोग के बाद में दूसरा काम, आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए कहां जाना होगा, गुरु का, कौन सा गुरु, सदगुरु, दूसरा गुरु नहीं चलेगा, सदगुरु, वहां जाके क्या करना होगा, उसके बाद, उसके बाद फिर आप जो है पहुंच गए, रियलाइजेशन हो गया। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को तुम युद्ध करो, तुम मनीषी हो, तुम्हारा अभी कर्म करना बाकी है, तुम्हारा ज्ञान में अधिकार नहीं है, पीछे एक बार बता दिया उन्होंने, क्योंकि जब 11 से 30 के बारे में उन्होंने जब बता दिया सांख्य तब भी वो खड़ा नहीं हुआ, तो भगवान समझ गए कुछ इसमें बाधा है, उसकी बाधा क्या है, बोला अभी वासना इसकी अटकी है, वासना उसको रोक रही है, उसको बोला तुम कर्म योग करो फिर तुम ज्ञान के अधिकारी हो। तो जो अर्जुन था ना इतनी देर तक सुनने के बाद में रो रहा था ना पहले, मगर सुन रहा था ध्यान से, ध्यान से सुनने के बाद में जैसे ही उन्होंने कहा स्थास्यति निश्चला अचला, क्या बात है, ऐसा भी कुछ होता है कर्मयोग करने करने के बाद में, फिर स्थिर हो गया बुद्धि, अचला हो गई, निश्चल हो गई, तुरंत उसके मन में एक प्रश्न आ गया। अब वो प्रश्न, प्रश्न के कारण को पाकर समाधि प्रज्ञा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा से अर्जुन बोला। अब उसको प्रश्न मिल गया यहां पर, देखो भगवान भी ऐसा ही करते हैं, बीच बीच में भूल जाएंगे, देखो ये स्थिति, आप योग में पहुंच गए, समाधि के अंदर आप जब वहां पहुंच गए तो फिर अब वो पूछा भाई ऐसे आदमी को लक्षण क्या है, उसके बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पता तो लगे कि हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे पता लगना चाहिए। तब जो है भगवान उसको बताने जा रहे हैं, पहले प्रश्न करेगा अर्जुन कि भाई ऐसा व्यक्ति कौन है। तो यहां पर उसने अपना एक वर्ड बना लिया, ज्ञानी ने कहा उस स्थास्यति वर्ड है ना, वहां से उसने पकड़ लिया कि स्थित प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है। कहां स्थित हो गई है? आत्मा में स्थिर हो गई है। बोले ऐसे आदमी के लक्षण के बारे में पता करना चाहिए। क्यों पता करें? ताकि हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, देखे तो सही उसके जो लक्षण जो बताएंगे भगवान तो उसको हम देखें। और इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है वो। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभासेत, किमासीत व्रजेत किम्, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभासेत, किमासीत व्रजेत किम्। अब वो समाधि प्राप्त पुरुष के बारे में उसके लक्षण जानने के लिए ये प्रश्न जो है अर्जुन कर रहा है। क्या कह रहा है? हे केशव, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ हो गया उसकी भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है? जो रियलाइज कर गया, जो ज्ञानी हो गया, उसकी क्या भाषा होती है ज्ञान प्राप्त करने के बाद? क्या खाली संस्कृत बोलेगा कि हिंदी बोलेगा कि इंग्लिश बोलेगा, उर्दू बोले? भाषा बताओ, कौन सी भाषा बोलता है फिर? स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित देव किम प्रभाषित, क्या बोलता है वो? प्रभाषित किम, उल्टा कर दो, बोलता भी है कि नहीं बताओ? किम प्रभाषित, क्या बोलता है? प्रभाषित किम, बोलता भी है कि नहीं? कई लोगों का होता है ना, रियलाइज के बाद चुप बैठ जाते हैं, महात्मा नहीं बोलते हैं। कुछ लोगों की ऐसी ऐसी धारणा होती है। किम आसीत, कहां बैठता है? आसीत किम, बैठता भी है कि नहीं, खड़े ही रहता है सब समय? देखो तो बैठता भी है, फिर लोगों के प्रश्न होते हैं कैसे बैठता है? पद्मासन में बैठता है क्या? वज्रासन में बैठता है? कैसे बैठता है? हमको तो देखना है ना, लोगों को हमको देखना है किस आसन में बैठा है वो। अच्छा, पद्मासन वज्रासन नहीं है तो चलो कौन सा आसन है? कपड़े का आसन है कि डियर स्किन है कि टाइगर स्किन है? कैसे बैठा है ये बताओ। ब्रजेत किम, क्या चलते हैं कि नहीं चलता है? चलता है तो कैसे चलता है? चप्पल पहनता है? कार में चलता है? प्लेन चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? उसका आचरण कैसा है ये जानना चाहता है अर्जुन। देखो ये लगता है प्रश्न बहुत सिंपल है, बचकाने प्रश्न लगते हैं, ये बचकाने प्रश्न नहीं है, बहुत गूढ़ प्रश्न है ये। ये तो बहुत सिंपल मीनिंग आपको, जनरल मीनिंग है, मगर इसका बहुत डीप मीनिंग है। समाधिस्थ का भाषा, यहां भाषा की बात नहीं होती है, यहां भाषा मतलब परिभाषा, परिभाषा मतलब उसके लक्षण बताओ, उसका विवरण बताओ, उसका डिस्क्रिप्शन बताओ, उसको डिफाइन करो। समाधिस्थ, जिसको वो मिल गया है, वो पुरुष कैसा है ये बताओ। भाषेति, भाषा, भाषा से हम डिस्क्राइब करते हैं ना, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना होगा तो हम कैसे करेंगे? लैंग्वेज से ही करेंगे ना, भाषा से बोलते हैं बताओ हमको, उसको डिस्क्राइब करो। अच्छा, अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ मतलब क्या होता है? कि जिसका मन स्थिर हो गया। बहुत अच्छा, कहां स्थिर हुआ? देखो हम लोग का भी मन स्थित प्रज्ञ होता है हम लोग का मन धन में स्थित है, पुत्र पुत्री में स्थित है कि नहीं? हम लोग का भी स्थित है। कल रात को हम लोग का कप्स गेम में स्थित था, अभी 6 नवंबर को फिर स्थित होने वाला है। अभी हम लोग का है ना मन स्थित, कौन आएगा? डोनाल्ड ट्रंप होगा 8 नवंबर को। चलो 8 नवंबर तक हमारा अभी वहां पर मन पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, तो उसका मन कहाँ लगा हुआ है? स्थित प्रज्ञा क्या धन में लगा हुआ है कि पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है बताओ? तो यहां पर शंकराचार्य जी स्थित प्रज्ञा की परिभाषा बताते हैं। स्थिता प्रतिष्ठा अहम अस्मि परम ब्रह्म, उसकी प्रज्ञा क्या है? अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं परम ब्रह्म हूं, यह स्थित प्रज्ञा है। यह डिफिनेशन है उसकी कि मैं ही वो परम ब्रह्म हूं, ऐसी उसकी प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा से का भाषा? तो यहां पर कहते हैं किम भाषणम वचनम कथम असौ परे भाष्यते। परे मतलब दूसरे लोग उसको कैसे बताते हैं। देखो शंकराचार्य जी का ट्विस्ट देखते जाओ, दूसरे लोग उसका कैसे वर्णन करते हैं। उसके बाद स्थित दिम किम प्रभाषित, वो कैसे है, उसकी दृष्टि में कैसा है। तो यहां पर वो बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष स्वयं किस तरह बोलता है, बैठता है, चलता है, अर्थात बैठना चलना किस प्रकार का है, क्या उसमें ईगो है? एक प्रश्न के पीछे शंकराचार्य जी बताते हैं कि दूसरे उसका कैसा वर्णन करते हैं ये बताओ, दूसरी जगह बताते हैं कि उसका स्वयं का वर्णन क्या है ये बताओ, दोनों तरफ से हमको बताओ, तब हमको पूरे लक्षण पता लगेंगे। देखो दूसरे लोग भी परखते हैं, दूसरे लोग भी जितने भी संत महात्मा हैं उनको परखते हैं। बहुत से लोग आते हैं, एक हम लोग के गुरुजी के पास में भी आया था कि मेरा एक प्रश्न है, मैं 20 साल से प्रश्न कर रहा हूं, बहुत महात्माओं को प्रश्न किया है, मेरे को उत्तर आज तक नहीं मिला। देखो वो महात्माओं को परख रहा है, उसको कौन सा उत्तर चाहिए? जो उसको पसंद है, दूसरा कुछ बताएगा वो नहीं पसंद है, उस महात्मा को नहीं आता है, परखते रहते हैं लोग। गुरुदेव जब पहली बार अपने संन्यास के बाद में अपने घर गए, केरल पैदल गए, थक गए थे, सो गए, गांव वाले मिलने आए, माता पिता उनके बोले भाई सो रहा है अभी, तो बोलते सोता भी है। तो हमने सोचा भाई वो तो सन्यासी है, संत है, सोता भी है। फिर उठे, फिर नहाने गए, तब तक दूसरे कोई आदमी आया, पूछते भाई कहाँ है भाई वो, मिलाओ चिन्मय से, नहा रहा भी, बोले नहाते भी है। फिर कोई पूछता है भाई खाना खाने बैठे, बोले खाता भी है। लो देखो सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है, सब अपनी अपनी परिभाषा बना के बैठते हैं। आपके हम लोग के शास्त्र में कई जगह आता है कि व्याध था एक, आपको मालूम है व्याध की स्टोरी? बूचर था वो, मगर स्थित प्रज्ञ था, ज्ञानी था, मगर उसका काम क्या था? मांस काट के बेचना, मगर वो ज्ञानी था। कबीर क्या थे? वजह वीवर जुलाह, ज्ञानी थे। हम लोग बंबई वाले क्या थे? बीड़ी बनाते थे। नरसी मेहता उनका नाम था ना, क्या था? नरसिंह। चलो वो हम लोग के आश्रम के नजदीक थे, गुरुदेव जाते थे उसके पास में, रियलाइज पर्सन, बीड़ी बनाते थे, ही वाज रोलिंग बीड़ी। हमारे कलकत्ते में गुरुजी गए तो उसको एक भक्त ने कहा, हम लोग के सामने की बात है, बोलते हैं संत महात्मा को जमीन पर बैठ के खाना चाहिए, अपनी परिभाषा। वो एयर कंडीशन ऑडिटोरियम के अंदर में ज्ञान ईयर करते थे, बोला आपको वहां नहीं करना चाहिए, आपको मैदान में करना चाहिए, आप क्यों एयर कंडीशन में करते हो, ज्ञान सबके लिए है ना, आप केवल एयर कंडीशन उसमें करते हो, केवल कुछ जनता आती है, आप अंग्रेजी में बोलते हो, आम जनता को पता नहीं लगता है, ऐसा ऐसा लोग विचार करते हैं। आपको टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर बैठ के नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग भोजन के बारे में भी कह देते हैं ऐसे, आप अच्छा ये ऐसा भोजन करता है, ये स्वामी नहीं हो सकता है। ठाकुर रामकृष्ण कहते थे कि अगर कोई सुअर का मांस खा के भी अगर मन को एकाग्र कर सकता है तो वो हबिस खाता हुआ आदमी अगर ना कर पाए तो उससे बेटर वो मांस खाने वाला है। हबिस मतलब बॉइल्ड थिंग्स, बॉइल्ड थिंग खा के, अब लोग कहते हैं ना जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, बात तो ठीक है, मगर पुराने जो संस्कार पड़े होंगे उसको टाइम लगेगा ना ठीक होने में। आप सात्विक अन्न खाते जाओ और मन आपका विचलित होता रहता है, और जो आदमी सुअर का मांस खा के, ठाकुर रामकृष्ण कहते हैं सुअर का मांस खा के अगर एकाग्र कर सकता है तो ही इज बेटर देन द पर्सन हु इज ईटिंग हबिस। और हम विचार करते रहते हैं लोगों के, अच्छा ये खाया है, ये महात्मा नहीं हो सकता, ऐसा लोग विचार करते रहते हैं। फिर किम प्रभासेत, अच्छा अगर बोलता भी है, मान लो बोलता भी है तो क्या बोलेगा वो, क्या कब्ज के बारे में बात करेगा कि नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करेगा, खाली ब्रह्म या माया के बारे में बात करेगा? अगर वो कब्ज के बारे में बात किया, नो नॉट ए स्वामी। पॉलिटिक्स के बारे में बात किया तो स्वामी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। लोग साधु के पास में आते हैं और आके उसके बाद में जब देखते हैं कि साधु जब अंग्रेजी बोलता है तो गेट डिसहार्टन, उनको दुख होता है बहुत बहुत। अपना अपना विचार है लोगों का, साधु अंग्रेजी बोलता है तो नहीं था मलेच्छ चाहिए, ऐसा सोचते हैं। देखो अर्जुन ने तीन वर्ड यहां पर यूज किए हैं, स्थित प्रज्ञ समाधिस्त स्थित दी, तीनों का मतलब एक है, फिर भी भगवान ने तीन वर्ड यूज किए। हम थोड़ा डीप चलते जाते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना?
बिल्कुल।
स्थित प्रज्ञ मतलब क्या है, तो यहां बताया गया यस प्रज्ञा सितात आत्मनि इति स्थित प्रज्ञ, जिसकी आत्मा के अंदर प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई उसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। समाधिस्थ क्या है, जिसका मन आत्मा में लग गया वो समाधिस्थ है। स्थित धी क्या है, जिसकी धी मतलब बुद्धि आत्मा में लग गई, तीनों का मतलब एक है। तो भगवान ने तीन वर्ड यूज क्यों किए, तो हमारे गुरुजी ने ये व्याख्या दी है, बहुत सुंदर व्याख्या है। कहते हैं गुरुजी स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का मतलब उसने श्रवण किया, श्रवण करने के बाद में उसका अज्ञान चला गया, जब अज्ञान चला गया तब धीरे धीरे आत्मा में स्थित होने लगा, इसलिए उसको कहा स्थित प्रज्ञ। फिर स्थित धी का मतलब क्या हुआ, बोले स्थित धी का यह मतलब हुआ कि उसके बाद उसने मनन किया, मनन करने के बाद में उसके जो है जो डाउट थे वो सब चले गए। बोलते हैं फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाता है, बोलते हैं सूक्ष्म सुप्त वासनाएं रह जाती हैं, सूक्ष्म सटल सुप्त स्लीपिंग, कुछ सटल वासना रह जाती हैं जो आपको प्रॉब्लम देती हैं, फिर वो जैसे ही आएगी फिर आपको संसार की तरफ ले जाएगी, ऐसी कुछ वासनाएं होती हैं। तो उसके लिए फिर क्या करना होता है, बोलो उसके लिए आपको फिर दूसरे निधि ध्यासन में आना होगा। तो विवेक चूड़ामणि भी कहते हैं ज्ञाते वस्तुनि अपि बलवती वासना अनादि ऐसा कर्ता भोक्ता अहम मति संसारस्य हेतु। देखो सब हो गया, श्रवण कर लिया, मनन भी कर लिया, उसके बाद में कर्ता भोक्ता अहम ये बना रहता है, ईगो आपका बना रहा है, तो ये कर्ता भोक्ता अहम बना रहेगा, फिर आपको संसार में घुसा देगा, फिर उधर टांग के लेके चला जाएगा। फिर क्या करें, बोले आपको जो है समाधि करनी है, समाधि करनी है मतलब आपको निधि ध्यासन करना है। इसलिए हम लोग को कहा गया समाधि सर्वदा कुरियात, उपेक्ष नाम रूप दे सच्चिदानंद तत्पर है समाधि सर्वदा कुरियात हृदय वा अथवा बही। आप लोगों ने सुना, ये किसने सुनाया गया? यहां पर जो बैठे हुए हैं उसके अंदर से मैं बता सकता हूं दो तीन 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 आदमी तो जरूर सुने हैं। दृग्दृश्य विवेक समाधि सर्वदा कुरिया, 24 घंटे आंख खोल के समाधि होती है। समाधि का यह मतलब नहीं कि आंख बंद करके बैठे तब आपको आत्मा नजर आई, तो जब आत्मा को देखना होगा फिर आंख बंद कर लो, फिर 24 घंटे बंद करके रखो तो आत्मा 24 घंटे रहोगे, ऐसा नहीं है। आंख खुली रह के भी समाधि हो सकती है। तो वही यहां पर कहा समाधि सर्वदा कुरियात। तो समाधिस्थ क्या है? अब निश्चित रूप से आत्मा में स्थित हो जाना यह समाधिस्थ है। तो स्थित प्रज्ञ, उसके बाद में स्थितधि, स्थित प्रज्ञ के अंदर श्रवण, स्थितधि के अंदर मनन और समाधिस्थ के अंदर में निधिध्यासन, ऐसा गुरु जी ने इसकी व्याख्या की है। और हमने इसमें गीता ध्यान श्लोक में भी हम लोगों ने देखा हुआ है अम्ब त्वाम अनुसंधानी भगवद गीते भवद्वेषिनीम, बोले अनुसंधान करते रहो गीता के बारे में। आप देखो अभी केवल ये प्रश्न है, अभी प्रश्न के ऊपर में अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ, अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। हमको अनुसंधान करते रहना होगा, करते रहना होगा, करते रहना होगा। तो यहां पर उसका बताते हैं पहली लाइन जो है भाषा माने परिभाषा, अर्जुन ये जानना चाहता है कि स्थित प्रज्ञ का विजन क्या है। देखो अब हम आस्ते 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 और अंदर घुसते जा रहे हैं। अर्जुन क्या जानना चाहता है? अर्जुन ये जानना चाहता है कि स्थित प्रज्ञ का विजन क्या है। स्थित प्रज्ञ होने से देखो ना शरीर बदली होगा ना दुनिया बदली होगी, केवल आपकी दृष्टि बदली होगी। तो वो उसकी दृष्टि क्या है ये बताओ। कि उसका माइंड प्योर हो गया, प्योर माइंड का बेटर विजन होगा। स्थित प्रज्ञ होने के पहले एक अलग दृष्टि थी, स्थित प्रज्ञ होने के बाद में वही व्यक्ति है, वही दुनिया है, मगर उसकी दृष्टि बदल गई। तो वो क्या दृष्टि थी? अब उसका माइंड प्योर हो गया है, उसका जो है विजन जो है प्योर हो गया है, बेटर विजन है। और सेकंड लाइन के अंदर ये बताना चाहता है, जानना चाहता है अर्जुन कि दूसरे उसको कैसे देखते हैं, दूसरे उसको कैसे देखते हैं ये भी जानना चाहता है। देखो केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने देखा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, मगर जब दोनों मिलते हैं तब उनका दूसरा प्रभाव हो जाता है। तो उसका अपना विचार क्या है और जब दूसरे देखते हैं तब क्या व्यवहार होता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। विजन क्या है? उसका स्वभाव, उसका अनुभव, उसकी समझ, उसकी परिपक्वता ये कैसी है, ये अर्जुन का प्रश्न है यहां पर। देखो हर आदमी की प्रतिक्रिया ना डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक बैलून है, एक बच्चे ने बैलून को देखा उसकी प्रतिक्रिया दूसरी होगी, उसी बैलून को अगर कोई व्यस्त देखता है उसकी दूसरी होगी। बैलून फूट गया बच्चा रोने लगता है, व्यस्त नहीं रोता है, बोले ऐसे ही है, इसका धर्म ऐसा है तो फूटेगा। तो प्रतिक्रिया वो जो है जानना चाहता है। तो अर्जुन का ये प्रश्न है कि वह कैसे कर्म करता है नंबर वन, और दूसरों के साथ में व्यवहार कैसा करता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। देखो व्यक्ति जब अकेला रहता है ना तब मौन रहता है नॉर्मली, पर आजकल जो है ना कभी कभी, उस दिन हम लोग डाउनटाउन, आप लोग भी बराबर देखते हो, वो पता नहीं कान में क्या लगाया हुआ है, बड़बड़ बड़बड़ करते हुए जा रहे हैं अकेले। हम लोग सोचते पागल है क्या बात करते जा रहा है, वॉकिंग एंड टॉकिंग बात कर रहा है, कोई तार और कुछ नहीं है, चले जा रहा है। और जब दूसरे होते हैं फिर उसका व्यवहार कैसा है, ये अर्जुन का प्रश्न है। एक और एंगल है इसमें, अर्जुन ये जानना चाहता है कि समाधिस्थ के अंदर मन के नाश करके वो आगे बढ़ गया। समाधि के अंदर आप मन के परे चले जाते हो, जब जागे रहते हो तब मन साथ रहता है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि जब वो मन के परे चले जाता है उसके बारे में बताओ, और वही आदमी जब मन के साथ होता है तब बताओ। पता लगा? अभी भी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, फिर हम और बाकी इसका हम अगले दिन देखेंगे, अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। आओ तो आएंगे, बाद में आएंगे, अभी अभी हम इसको अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी और समय लगेगा, इसको समझना है। इतनी दूर तक समझ में आया तो सब नहीं बोलते।
आ जाएगा
ओ